ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 17। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जब जरा रूपी रात्रि आती है तब खांसी रूपी स्यार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी उलूक आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे नीच वृद्धावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। जैसे फल से वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही बुढ़ापे में देह कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्र आदि उसकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्ध अवस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं उसको, वह तब ऊंट की नाई भासता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं करूं। इस शरीर की तीनों अवस्था में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल्य अवस्था महामूढ़ है, युवा अवस्था महाविकारवान है और जरावस्था महादुख का पात्र है। बाल्यावस्था को युवावस्था ग्रास लेती है, युवावस्था को जरावस्था ग्रास लेती है और जरावस्था को मृत्यु ग्रास कर लेती है। यह अवस्था सब अल्पकाल की है, इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा। इसे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाओ। हे मुनीश्वर, जब जरावस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से रात्रि तत्काल आ जाती है और जो संध्या के आने में दिन की इच्छा करते हैं वह मूर्ख है, वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखनी महामूर्खता है। हे मुनीश्वर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आवे तो पकड़ लूं, वैसे ही मृत्यु भी देखती है कि जरावस्था आवे तो मैं इसका ग्रास कर लूं। हे मुनीश्वर, यह परम नीच अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीभूत कर देती है, कपाने लगती है और शरीर को निर्बल और क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर बर्फ की वर्षा हो और वह जर्जरीभूत हो जाए, वैसे ही यह शरीर को जर्जरीभूत कर डालती है। जैसे वन में बाघ आकर शब्द करते हैं और मृग का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी बाघ आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, जब जरा आती है तब जैसे चंद्रमा के उदय से कमलिनी खिलाती है, वैसे ही मृत्यु प्रसन्न होती है। यह जरावस्था बड़ी दुष्ट है, इसने बड़े बड़े योद्धाओं को भी दीन कर दिया है। यद्यपि बड़े बड़े शूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर उनको भी जरा ने जीत लिया है। जो बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर डालते हैं, उनको भी जरा पिशाचिनी महादीन कर देती है। इस जरा रूपी राक्षसी ने सबको दीन किया है, यह सबको जीतने वाली है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में अग्नि लगती है और उसमें से धूम निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष में जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकलता है। जैसे डिब्बे में बड़े रत्न रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुख रूपी अनेक रत्न रहते हैं। जरा रूपी वसंत ऋतु है, उससे शरीर रूपी वृक्ष दुख रूपी रस से युक्त होता है। जैसे हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपी जंजीर से बंधा हुआ पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग शिथिल हो जाते हैं, बल क्षीण हो जाता है, इंद्रियां भी निर्बल हो जाती है और शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, परंतु उसकी तृष्णा नहीं घटती, वह तो नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे रात्रि आती है तब सूर्यवंशी कमल सब मुंद जाते हैं और पिशाचनी आविचरने लगती है और प्रसन्न होती है, वैसे ही जरा रूपी रात्रि के आने से सब शक्ति रूपी कमल मुंद जाते हैं, तृष्णा रूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, जैसे गंगा तट के वृक्ष गंगा जल के वेग से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही जो यह आयु रूपी प्रवाह चलता है उसके वेग से शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे मांस के टुकड़े को देखकर आकाश में उड़ती चील नीचे आकर ले जाती है, वैसे ही जरावस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे वृक्ष को हाथी खा जाता है, वैसे ही जरा वाले शरीर को काल देख के खाता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढा है, उसमें अज्ञानी गिरा है, पर संसार रूपी गड्ढा तो अल्प है और अज्ञानी बड़ा हो गया है। संकल्प विकल्प की अधिकता से बढ़ा है। जो ज्ञानवान पुरुष है वह संसार को मिथ्या जानता है और संसार रूपी जाल में नहीं फंसता, और जो अज्ञानी पुरुष है वह संसार को सत्य जानकर उसकी आस्था रूपी जाल में फंसता है और भोगों की वांछा करता है। वह ऐसा है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखकर बालक पकड़ने की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी संसार को सत्य जानकर जगत के पदार्थ की वांछा करता है कि यह मुझे प्राप्त हो और यह न हो। यह सब सुख नाशात्मक है। अभिप्राय यह है कि आते हैं और जाते हैं, स्थिर नहीं रहते, इनको काल ग्रास करता है। जैसे पक्के अनार को चूहा खा जाता है, वैसे ही सब पदार्थों को काल खा जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब पदार्थ काल ग्रसित है। जैसे नेवला सर्प को भक्षण कर जाता है, वैसे ही बड़े बड़े बलि सुमेरु ऐसे गंभीर पुरुषों को काल ने ग्रसित किया है। जगत रूपी एक गुलर का फल है, उसमें मज्जा ब्रह्मादिक है और उसका वन ब्रह्मरूप है। उस ब्रह्मरूप वन में जितने वन हैं सो सब इसका आहार है। यह काल सबको भक्षण कर जाता है। हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जो कुछ देखने में आता है सो सब इसने ग्रास कर लिया है। हमारे जो बड़े ब्रह्मादिक हैं इनको भी काल ग्रास कर जाता है, तो और का क्या कहना है। जैसे सिंह मृग का ग्रास कर लेता है, काल किसी से जाना नहीं जाता। क्षण घड़ी प्रहर दिन मास और वर्षादिक से जानिए सोई काल है और काल की मूर्ति प्रकट नहीं है। यह किसी को स्थिर नहीं होने देता। एक बेली काल ने पसारी है, उसकी त्वचा रात्रि है और फूल दिन है, और जीव रूपी भौरे उस पर आकर बैठते हैं। हे मुनीश्वर, जगत रूपी गुलर का फल है, उसमें जीव रूपी बहुत मच्छर रहते हैं। जैसे तोता अनार का भक्षण करता है वैसे ही काल उस फल का भक्षण करता है। जगत रूपी वृक्ष है, जीव रूपी उसके पत्र है और काल रूपी हस्ती उसका भक्षण कर जाता है। शुभ अशुभ रूपी भैंसे को काल रूपी सिंह छेद छेद के खाता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाक्रूर है, किसी पर दया नहीं करता, सबको खा जाता है। जैसे मृग सब कमलों को खा जाता है, उससे कोई नहीं बचता, वैसे ही काल भी सबको खाता है, परंतु एक कमल बचा है। उस कमल के शांति और मैत्री अंकुर है और चेतना मात्र उसका प्रकाश है। इसी कारण वह बचा हुआ है। काल रूपी मृग इस तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि इसमें प्राप्त हुआ काल भी लीन हो जाता है। जो कुछ प्रपंच है सो सब काल के मुख में है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र कुबेर आदि सब मूर्ति काल की धरी हुई है, यह उनको भी अंतर्धान कर देता है। हे मुनीश्वर, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब काल से होते हैं। अनेक बार इसने महाकल्प को भी ग्रास किया है और अनेक बार करेगा। काल को भोजन करने से तृप्ति कदाचित नहीं होती और कदाचित होने वाली भी नहीं है। जैसे अग्नि घृत की आहुति से तृप्त नहीं होता, वैसे ही जगत और सब ब्रह्मांड का भोजन करके भी काल तृप्त नहीं होता। इसका ऐसा स्वभाव है कि इंद्र को दरिद्री कर देता है और दरिद्री को इंद्र कर देता है। सुमेरु को राई बनाता है और राई को सुमेरु कर देता है। सबसे बड़े ऐश्वर्यवान को नीच कर डालता है और सबसे नीच को ऊंच कर डालता है। बूंद को समुद्र कर डालता है और समुद्र को बूंद करता है। ऐसी शक्ति काल में है। यह जीव रूपी मच्छरों को शुभ कर्म रूपी छुरे से छेदता है। काल रूप का चक्र जीव रूपी हंडियों की शुभ अशुभ कर्म रूपी रस्सी से बांध कर फिरता है और जीव रूपी वृक्ष को रात्रि और दिन रूपी कुल्हाड़े से छेदता है। हे मुनीश्वर, जितना कुछ जगत विलास भासता है काल सबको ग्रस लेगा। जीव रूपी रत्न का काल डब्बा है, सो सबको अपने उदर में डाल जाता है। काल यो खेल करता है कि चंद्र सूर्य रूपी गेंद को कभी ऊर्ध्व को उछालता है और कभी नीचे को डालता है। जो महापुरुष है वह उत्पत्ति और प्रलय के पदार्थों में किसी के साथ स्नेह नहीं करता और उसका काल भी नाश नहीं कर सकता। जैसे मुंड की माला महादेव जी गले में धारे है, वैसे ही वह भी जीवों की माला गले में डालता है। हे मुनीश्वर, जो बड़े बलिष्ठ हैं, उनको भी काल ग्रस कर लेता है। जैसे समुद्र बड़ा है उसको बड़वानल पान कर लेता है और जैसे पवन भोजन पत्र को उड़ाता है, वैसे ही काल का भी बल है। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो इसके आगे स्थित रहे। हे मुनीश्वर, शांतिगुण प्रधान देवता, रजोगुण प्रधान बड़े राजा और तमोगुण प्रधान दैत्य और राक्षस है, उनमें किसी को सामर्थ्यता नहीं जो इसके आगे स्थिर रहे। जैसे तौली में अन्न और जल भर के अग्नि पर चढ़ा देने से अन्न उछलता है और वह अन्न के दाने करछी से कभी ऊपर और कभी नीचे फिर जाते हैं, वैसे ही जीव रूपी अन्न के दाने जगत रूपी तौली में पड़े हुए राग द्वेष रूपी अग्नि पर चढ़े हैं और कर्म रूपी करछी से कभी ऊपर को जाते हैं और कभी नीचे को। हे मुनीश्वर, यह काल किसी को स्थिर नहीं होने देता, यह महाकठोर है, दया किसी पर नहीं करता, इसका भय मुझको रहता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मैं काल से निर्भय हो जाऊं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह काल बड़ा बलिष्ठ है। जैसे राजा के पुत्र शिकार खेलने जाते हैं तो वन में बड़े बड़े पशु पक्षी उनसे दुख पाते हैं, वैसे यह संसार रूपी वन है, उसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी है। जब काल रूपी राजपुत्र उसमें शिकार खेलने आता है तब सब जीव भय पाते हैं और फिर जर्जरीभूत होते हैं और वह उनको फिर मारता है। हे मुनीश्वर, यह काल महाभैरव है, सबका ग्रास कर लेता है, प्रलय में सबका प्रलय कर डालता है और इसकी जो चंडिका शक्ति है उसका तो बड़ा उदर है। वह कालिका सबका ग्रास करके पीछे नृत्य करती है। जैसे वन के मृग को सिंह और सिंहिनी भोजन करके नृत्य करते हैं, वैसे ही जगत रूपी वन में जीव रूपी मृग को भोजन करके काल और कालिका नृत्य करते हैं। फिर इन्हें से जगत का प्रादुर्भाव होता है, नाना प्रकार के पदार्थों को रचते हैं और पृथ्वी, बगीचे, बावली आदि सब पदार्थ इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उत्पत्ति भी इनसे होती है और एक समय में उनका नाश भी कर देती है। सुंदर समुद्र रच के फिर उसमें अग्नि लगा देती है और सुंदर कमल को बना के फिर उसके ऊपर बर्फ की वर्षा करती है। जहां बड़े बड़े स्थान बसते हैं उनको उजाड़ कर डालती है और फिर उजाड़ में बस्ती करती है और नाश भी करती है, किसी को स्थिर नहीं रहने देती। जैसे बाग में वानर आकर वृक्ष को ठहरने नहीं देता, वैसे ही काल रूपी वानर किसी पदार्थ को स्थिर रहने नहीं देता। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से सब पदार्थ काल से जर्जरीभूत होते हैं, उनका आश्रय में किस रीति से करूं? मुझको तो यह सब नाश रूप भासते हैं, इसे अब मुझको किसी जगत के पदार्थ की इच्छा ही नहीं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस काल का महापराक्रम है, इसके तेज के सम्मुख कोई नहीं रह सकता। यह क्षण में ऊंच को नीच और नीच को ऊंच कर डालता है, उसका निवारण कोई नहीं कर सकता, सब उसी के भय से कांपते हैं। यह महाभैरव है, सब विश्व का ग्रास कर लेता है। इसकी चंडिका रूपी शक्ति है, वह तो अति बलवान है और नदी रूप है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाकाल रूपी काली है, उसका बड़ा भयानक आकार है। काल रूप जो रुद्र है उससे अभिन्न रूपी कालिका है, वह सबका पान करके पीछे भैरव और भैरवी नृत्य करते हैं। उस काल और कालिका का बड़ा आकार है, उसका आकाश शीश, पाताल में चरण और दशो दिशा भुजा है। सप्त समुद्र उसके हाथ में कंकण है, संपूर्ण पृथ्वी रूप उसके हाथ में पात्र है, और उस पर जो जीव है वह भोजन के योग्य है। हिमालय और सुमेरु पर्वत दोनों कानों में कुंडल है, चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों लोचन हैं, और सब तारागण उसके मस्तक में बिंदु है। काल के हाथ में त्रिशूल और मुसल आदि शस्त्र है, और कालिका के हाथ में दांत रूपी फांसी है, उसमें जीवों को मारती है। ऐसी कालिका देवी सब जीवों का ग्रास करके महाभैरव के आगे नृत्य करती है, अट्टाट शब्द करती है और जीवों को भोजन करके उनकी मुंड माला गले में धारण करती है। भैरव के सम्मुख रहने की किसी में शक्ति नहीं। जहां उजाड़ है वह क्षण में बस्ती कर डालती है, और जहां बस्ती है वह क्षण में उजाड़ कर डालती है। इसी से उसका नाम देव कहते हैं। वह बड़े बड़े पदार्थों को उत्पन्न और नष्ट करता है, स्थिर किसी को नहीं रहने देता। इससे इसका नाम कृतांत है, और नित्य रूप भी यही है, क्योंकि इसका परिणाम अनित्य है। इसी से इसका नाम कर्म है। जब अभाव रूपी धनुष हाथ में धरता है तो उससे राग द्वेष रूपी बाण चलता है, और उस बाण से जर्जरी भूत करके नाश होता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाता है और उठाकर नष्ट भी कर देता है, वैसे ही काल को उपजाने और नष्ट करने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। हे मुनीश्वर, काल रूपी धीवर है और उसने क्रिया रूपी जाल पसारा है, उसमें जीव रूपी पक्षी फंसते हैं, सो फंसे हुए शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह तो सब नाश रूप पदार्थ है, इनमें आश्रय किसका करूं कि जिससे सुख हो। यह तो स्थावर जंगम जगत सब काल के मुख में है, यह सब नाश रूप मुझको दृष्टि आते हैं, इसे जो निर्भय पद हो वही आप मुझसे कहिए। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।